मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 16 जुलाई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं शिव मोहन दुबे, आप इलाहाबाद से हैं, धर्मवीर चौरसिया, आप बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, और अंकित कैचाडिया, राजकोट गुजरात से हैं। तो शिव मोहन, धर्मवीर और अंकित, आप तीनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं स्टूडेंट्स के नाम लेता हूं, चाहे इस स्वागत वाले क्रम में या फीडबैक वाले में, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उच्चारण में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। कारण ये कि जो सरनेम होते हैं, सारे सरनेम चूंकि ध्यान में नहीं रहते, जब बिल्कुल कोई एक नई स्पेलिंग मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उसका उच्चारण, अंग्रेजी में तो आप जानते ही हैं कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा नहीं जाता, हिंदी हो तो बात अलग है, तो उसमें उच्चारण दोष आ सकता है। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और मुझे यकीन है कि उतना मार्जिन आप सभी फ्रेंड्स मुझे देकर चलेंगे। दोस्तों, हम लंबे समय से ऑडियो पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुझे आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि कुछ न कुछ नई चीज़ें ऐड करता जाऊं। लेकिन स्वाभाविक है कि मेरे सामने एक छोटा सा धर्म संकट ये होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले दिन से इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जिनको लगभग 1.5 साल हो गए सुनते हुए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आज पहली बार इस ऑडियो को सुनेंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक मिला जुला स्वरूप इसका बनाना पड़ता है। तो हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हों, कुछ उदाहरण ऐसे हों, और बातें तो खैर ऐसी होती ही हैं जो पुराने स्टूडेंट्स को रिपीट होती हुई मालूम पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि उसे आप सब मार्जिन देकर चलें, क्योंकि जो रिपीटेशन होता है वो कभी भी न तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और न फालतू का काम होता है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने अपने इस डेली ऑडियो गाइडेंस के जरिए, 15 दिन की क्लासेस के जरिए, और यहां तक कि काफी कुछ सीमा तक अपने स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के जरिए तैयारी की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को सूचना दी थी कि एक स्टूडेंट हैं अपर्णा जी, जिनकी 108th रैंक आई है, 108वीं रैंक आई है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो एक लेटर लिखा है तैयारी करने वाले आप सब स्टूडेंट्स के लिए, और डेफिनेटली हम लोगों के लिए भी जो तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि जब आप नए स्टूडेंट से उनकी तैयारी के बारे में पूछते हैं तो आप अपने को करेक्ट करते जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समय के साथ आप कदम ताल मिलाकर तैयारी करा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए भी, मैंने आपको कहा था कि उनका लेटर अवेलेबल है और वो इंग्लिश में मिला है, मैंने उसका हिंदी करवाने के लिए उसे भेज दिया है, मेरे पास ट्रांसलेशन होकर आ गया है और नॉलेज सेंटर में डाल भी दिया गया है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने उसे देखा भी हो, पढ़ा भी हो, लेकिन यदि नहीं पढ़ा हो तो उसे आप डेफिनेटली पढ़ेंगे दोस्तों। वो इसलिए कि जिसको हम कहते हैं फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब घोड़े के मुंह से ही आप सुन रहे हैं, यानी कि ठीक है, मैं अगर सफल कैंडिडेट रहूं तो था, अब नहीं हूं, है ना, मेरी ये सफलता 33 साल पुरानी हो गई है। लेकिन अगर अपर्णा कोई बात कह रही है तो उनकी सफलता तो बिल्कुल नई सफलता है, लेटेस्ट है, तो शायद उन बातों पर आपको ज्यादा यकीन होगा। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब उसे डेफिनेटली सुने, पढ़ें, और पढ़ने के बाद उस पर बहुत गौर करें, और गौर करने के बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करें, और ज्यादा बेहतर होगा कि आप अप्लाई करने से पहले अपने को इवेलुएट करें। इवेलुएट करने के लिए बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं, सच पूछिए तो कोई बहुत नई बातें नहीं कही है, लेकिन खासियत यह है कि उन्होंने जो बात जिस तरीके से कही है उनमें एक बहुत ईमानदारी झलकती है। ईमानदारी इस मायने में झलकती है कि साफ साफ लगता है कि इन्होंने सुनकर ये बातें नहीं कही हैं, ये अनुभव करके इन बातों को कह रही हैं। तो जब व्यक्ति में वो अनुभव की गहराई आ जाती है दोस्तों, तो साफ साफ पता लग जाता है कि ये जो व्यक्ति जो बातें कह रहा है ये कितनी सही है, कितनी प्रभावशाली है, और सही मायने में कि हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के बाद उन पर गौर करें, उन पर सोचें, फिर अपने आप को उस पर इवेलुएट करें और इसके बाद अपने पर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको ये बातें सुनी सुनाई लग सकती हैं, लेकिन अगर यही हैं तो आप बताइए कि किया क्या जा सकता है। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं शुरुआत में, उन सब का जोर पूरी तरह से सिर्फ हार्ड लेबर, हार्ड लेबर, हार्ड लेबर पर होता है, और वो करते भी हैं। काश कि उनमें से सभी को सफलता मिल जाती, बहुत थोड़ों को सफलता मिलती है, लेकिन जो सही तरीके से मेहनत करते हैं, जिसको स्मार्ट वर्क कहा जाएगा, वो बहुत जल्दी सफलता को हासिल कर लेते हैं, वो इसके रहस्य को जानते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब उपदेश जैसी चीजें हैं यार, ये तो हम भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों, आप वही भाषा बोलने लगेंगे जो भाषा अपर्णा जी बोल रही है। जैसे अब मैं थोड़ी सी इन्हीं की बातों को लेकर के आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा। चर्चा मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि आप इनके एंगल को समझ सकें। एक अंदाजे बया ही सब कुछ बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। इन्हीं बातों को मैं अपने अंदाजे बया करता हूं, दूसरा कोई अंदाजे बया करता है, इरा सिंगल अंदाज, उनका अंदाजे बया अपना होगी, अपनी होगी, लेकिन बात यही होगी। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जैसे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता तो एक ही है, लोग अलग अलग तरीके से उसे बताते हैं, लेकिन जो बताते हैं वो भी एक ही है। ईमानदारी होनी चाहिए, भावना की प्रबलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, दूसरों की मदद की जानी चाहिए, चेतना परिष्कृत होनी चाहिए, बस यही ईश्वर तक पहुंचने के यही रास्ते हैं। तो नाम उनके चाहे भले अलग अलग हों, लेकिन तरीका एक ही है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मित्रों, मैं यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप देखें कि जो बात आपको बताई जा रही है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, वो इनसे कितना मेल खाती है। पहली बात फ्रेंड्स उन्होंने कही है, अपनी तैयारी अपने ढंग से कीजिए। मित्रों, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास, मेरे मुझसे किताबों के नाम पूछते हैं, कोचिंग के एड्रेसेस पूछते हैं, तरीके पूछते हैं, क्या बताऊं मैं, अपर्णा क्या कह रही है, क्योंकि मेरा तरीका आपके ऊपर ज्यों का त्यों, ज्यों की त्यों अप्लाई नहीं हो सकता। उसका कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि आप विजय अग्रवाल नहीं हैं और विजय अग्रवाल आप नहीं हैं। मेरी कैपेसिटी अलग है, मेरी बैकग्राउंड अलग है, मेरी मानसिक क्षमता अलग है, मेरे अंदर की जो प्रेरणा है, जो जोश है, जो रिसीविंग पावर है, जो मेमोरीज कैपेसिटी है, वो अलग है। तो ऐसी स्थिति में मेरा फार्मूला आपके ऊपर ज्यों का त्यों कैसे लागू हो सकता है, और ना आपका मेरे ऊपर लागू हो सकता। लेकिन हां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समान रूप से होती हैं और वो लागू होंगी। तो आपको अपनी तैयारी करने के लिए अपना तरीका इजाद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप देखिए कि पेंटिंग स्टूडेंट्स जाकर के आर्ट कॉलेज में पेंटिंग सीखते हैं, 40 स्टूडेंट का बैच होता है, सबको एक ही तरीके से पेंटिंग के सूत्र बताए जाते हैं, सब वहां जब पेंटिंग करते हैं तब भी बता दिया जाएगा कि आप इसको पेंट कीजिए, मॉडल दे दिया जाएगा और सभी उसको पेंट करेंगे। लेकिन जब वहां से पढ़ करके बाहर निकलते हैं तो जब वो पेंटिंग बनाते हैं तो सबकी पेंटिंग अलग अलग होती है, यानी कि सबने अपने अपना ढंग तैयार कर लिया था, अपने अपने ढंग से वो पेंटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, किताबें कोई भी हों, थोड़ी सी स्तरीय हों, पढ़ने का ढंग जो आपका अपना होगा, आपकी जरूरत होगी, वो उसे बिल्कुल भिन्न बना देगा, और यही होगा अपनी तैयारी अपने ढंग से कीजिए। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया है दोस्तों, हर एक प्रश्न को हल करने की कोशिश होनी चाहिए। ये एग्जामिनेशन हॉल का दिया हुआ है। डेफिनेटली जो उन्होंने पहला ही वाक्य लिखा कि एक नंबर का अंतर भी बड़ा साबित होता है, ये तो अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उससे आपको एहसास हो गया होगा। बाद में और एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक नंबर में कितनी बड़ी ताकत होती है। मित्रों, जो आपने अगर सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल पेपर को ले लीजिए, तो ऑप्शनल पेपर आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको जो कहते हैं उत्तर देते नहीं बन रहा है या सटीक उत्तर देते नहीं बन रहा है, लेकिन यदि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन कितने भी घुमाकर पूछा जाए क्या आप उस पर कुछ लिख नहीं सकते। दूसरी बात हम जनरल स्टडीज की लेते हैं। जनरल स्टडीज में आप कह सकते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो ऐसा बाउंसर आ गया कि सिर के ऊपर से निकल गया। ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही मायने में डेली न्यूज सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मैं अगर उसमें ऐड करना चाहूं तो चूंकि आप मेरे श्रोता हैं तो मैं कह सकता हूं ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं, तो आपको वो बॉल बाउंसर नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि मैं इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूं, उस समय पढ़ा था, उस समय सुना था, कुछ ना कुछ आपको जानकारी है, और कुछ ना कुछ जानकारी है, बस वही जानकारी आप वहां लिखकर आ सकते हैं। इसीलिए जो इन्होंने कहा है कि कोशिश होनी चाहिए, ये आप असंभव इसको मत मानकर चलिए, ये बहुत संभव है। ये केवल आपके पढ़ने की रणनीति और कंटिन्यूटी पर निर्भर करती है। और जो स्टूडेंट शुरू से मेरा इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जो मैंने मार्च से शुरू किया था पिछले साल, वो चाहे तो दिसंबर में जो पिछले साल मेंस के एग्जाम हुए थे वो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, और फिर अपने को केवल इसी पॉइंट पर इवेल्युएट करें कि इन पर मैं कुछ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। वो शायद ये जानकर बहुत खुश हो जाएंगे कि नहीं, मैं तो इन पर लिख सकता हूं, और उसी समय अपर्णा का ये स्टेटमेंट आपको सही मालूम पड़ेगा कि कोशिश होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात उन्होंने कही है, शुरू से ही अच्छी स्पीड मेंटेन करें। डेफिनेटली, अब आप देखें कि अगर हम मानकर चलें कि आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन 200 शब्दों का है, तो आपको 3 घंटे के अंदर 4000 वर्ड्स लिखने होंगे। तीन घंटे के अंदर 4000 वर्ड्स। और यदि हम उनको मिनट में डिवाइड कर दें, एक क्वेश्चन कितने मिनट में, तो 9 मिनट्स। अपर्णा ने यहां 8 मिनट्स की बात कही है। 8 मिनट्स की बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि शुरू में आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें 1 मिनट का समय आपका खर्च जाएगा। इसीलिए हम उस आपके 9 मिनट मानकर नहीं चल रहे हैं, उन्होंने 8 मिनट दिया हुआ है। अब ये स्पीड आएगी कैसे? फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी भी प्रैक्टिस की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने अभी तक जिंदगी में जितनी चीजें हासिल की हैं, याद रखिए सिर्फ प्रैक्टिस से ही की है। आप चलना वैसे नहीं सीख गए हैं, अपनी मम्मी से पूछिए, मां से पूछिए, बैठना तक वैसे ही नहीं सीखे हैं, बोलना क्या आप वैसे ही सीख गए? कितना तुतला तुतला कर बोलते थे और धीरे धीरे अब बोलना सीखा है? क्या लिखना ऐसे ही सीख के, हाथ पकड़ करके अ आ ए बी लिखाया गया है? आपसे जाकर के पूछिए अपने पेरेंट्स से। फिर आप प्रैक्टिस करते 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 आज आप इस स्थिति तक पहुंच गए हैं कि आपके लिए बोलना और लिखना बहुत सहज हो गया है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप ये मत मान करके चलिए कि हो ही नहीं सकती, मेरी तो स्पीड ही कम है, या फिर ये कि अरे यार परीक्षा हॉल में लिख लेंगे। नहीं, क्योंकि परीक्षा हॉल आपको एक चुनौती पैदा करेगा। याद रखिए वो चुनौती ये होगी कि आपको लिखना भी है और साथ ही साथ सोचना भी है। सेम स्पीड से दोनों को काम करना, आपके दिमाग को भी और आपके हाथ को भी। इसीलिए हमेशा इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने कहा, जितना हो सके उतना रिवाइज करें। दोस्तों, इसके बारे में तो मैं रोज ही बातें कर रहा हूं, न्यूज को लेकर के बातें कर रहा हूं, जो प्रेस क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो बातें कर रहा हूं कि एक ही क्लिपिंग्स मैं आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप उसको पढ़ सकें। पढ़ने के दौरान आपका रिवीजन होता है। मैंने आपको यह भी बताया कि जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो पिछले खबरों का या तो एक्सटेंशन होती हैं या दोहराना भी होता है। जैसे आज के कल के AIR न्यूज में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर है, तो क्या आप भूमि अधिग्रहण विधेयक पर नहीं जानते, या इससे पहले न्यूज में नहीं आई बातें, या आपको भूमि अधिग्रहण के बारे में अभी तक कोई क्लिपिंग्स, एडिटोरियल कमेंट्स या एडिटोरियल आर्टिकल्स प्रोवाइड नहीं किया गया है? कल भी न्यूज में आ गया, और मजेदार बात है कि आज भी मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फिर अब आप क्या करेंगे कि नहीं नहीं हम तो जानते हैं, अब इसको छोड़ दें, इसको क्या फालतू के पढ़ना, समय खराब होता है? नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण विधेयक एक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, तो उसे रिवाइज ही करना चाहिए और पूरे ध्यान से रिवाइज करना चाहिए। देखिए, अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आपने सोच लिया कि यार चलो इसके बारे में तो बहुत कुछ मालूम है लेकिन सर ने कहा है और भेजा है तो एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं, तो फिर आप उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम भी जब भी आप करें, आप उसको उसी तरह से रिवाइज करें, उसी तरह से पढ़ें एज इफ यू आर इस रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मानो कि आप पहली बार ही इसे पढ़ रहे हैं। मित्रों, अगर मैं बड़े रोमांटिक अंदाज में कहूं तो इसी तरह से जैसे आप अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं से हर बार नए और ताजे रूप में मिलते हैं, ठीक इसी तरह से उसी आर्टिकल को, चाहे इससे पहले आप कितनी भी बार क्यों ना मिल चुके हों, आप उसी तरीके से पढ़िए जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हों। जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। दोस्तों, इसमें सफलता का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, ये मैं कहते कहते थक गया हूं, कितना कहूं समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जानता हूं कि हार्डली 1% स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो बात, जो प्रैक्टिस आपका अंतिम परिणाम देती है, उसी पर हम प्रैक्टिस नहीं करते। आप ये बताइए मुझे कि आप अब सब अभी इतनी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एक साइड में आप हैं और आपको आईएएस बनना है, आपको एक इवेलुएट करने वाला होगा, इवेलुएटर होगा जो आपका मूल्यांकन करेगा, आपको न तो मूल्यांकन करने वाला जानता है और न आप मूल्यांकन करने वाले को जानते हैं, दोनों एक दूसरे को हम नहीं जानते। अब आप मुझे बताइए कि दोनों के बीच में ब्रिज क्या है, किसके आधार पर वो आपका मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करने वाला आपकी कॉपी के आधार पर, और कॉपी क्या होगी, वो जो आप लिख कर आएंगे, यानी कि सारा कारोबार तो वही है, सारा करिश्मा वही है, आपकी कॉपी में है। और मजेदार बात है दोस्तों कि इसी की प्रैक्टिस करने में स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत 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 तकलीफ होती है। उनको क्या लगता है कि अरे यार इसकी प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो कौन सा यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, क्यों फालतू के मेहनत करें, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि कुछ और पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि सारा जोर उनका पढ़ने के ऊपर है, पढ़ो पढ़ो रटो रटो भगवान जाने क्या करो, उनका बस चले तो क्या कर ले, तो कौन प्रैक्टिस करे। अरे आ जाएगा तो लिख लेंगे यार, वहां इसमें क्या फर्क पड़ता है, अगर हमको सब्जेक्ट मालूम है, बड़ा अच्छा तर्क देते हैं, अगर हमको सर सब्जेक्ट मालूम है तो वहां लिखने में क्या दिक्कत है, हम लिख लेंगे। दोस्तों, शायद आप मेरी बात पर यकीन न करें तो इस बात पर यकीन कर ले, दोस्तों जो आप आंसर की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, ये मालूम है आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके माइंड की प्रैक्टिस है, इस बात की प्रैक्टिस है कि आपका माइंड जरूरत पड़ने पर वही वही चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है जो आपको जरूरी है, यह प्रैक्टिस है। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तब आपका दिमाग उसके अनुकूल अपने आप को ढालेगा, और जिस दिन आप अपने दिमाग को उसके अनुकूल ढाल लेंगे, बात बन जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसको आप केवल स्पीड की प्रैक्टिस मत मानिए, इसको केवल नॉलेज की प्रैक्टिस मत मानिए। जैसे जिम जाकर के हम अपने मसल्स मजबूत करते हैं, एक दिन में नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग के मसल्स मजबूत होते हैं जो हमको जरूरत पड़ने पर वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी हमें जरूरत है, और वही एनालिसिस करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा है कि वही विषय चुने जो दिल के करीब हो। बहुत मेरे पास मेल आते हैं और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स की मेरे प्रति काफी कुछ शिकायतें भी हैं कि सर हमारे मेल के उत्तर नहीं देते। मैं क्या उत्तर दूं दोस्तों, बताइए। आप पूछते हैं कि मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में से क्या लूं, मैं कैसे बता सकता हूं, आप जरा मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर तरस खाइए कि सर कैसे बता सकते हैं, न मुझे जानते हैं, न मेरी बैकग्राउंड मालूम है, न मेरी रुचि मालूम है, कैसे सर बता देंगे कि दोनों में से क्या लेना चाहिए। और दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले के एनालिसिस में आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट 43 स्टूडेंट जो थे उनके टोटल सब्जेक्ट निकाले गए तो 15 विषय थे, यानी कि उन 15 विषयों में आपको फर्स्ट 43 में लाने की क्षमता है, रिमेनिंग में भी क्षमता है, क्या कहा उन्होंने, जो आपके दिल के करीब हो। दिल के करीब क्यों कह रही है वो? दिल के करीब इसलिए कह रही है मित्रों, क्योंकि उस विषय में ही आपको मजा आएगा, और जब तक आपको विषय में मजा नहीं आएगा वो विषय आपके दिमाग का हिस्सा नहीं बनेगा, और जब तक वो विषय दिमाग का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक आप उसको उसकी एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, और खासकर जिस तरह के प्रश्नों के उत्तर की जरूरत है। इसीलिए रुचि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। और आप मेरी जो पुस्तक है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें एक पूरा चैप्टर है, आप उठा करके देखिए कि आप ऑप्शनल विषय का चयन कैसे करेंगे। आराम में कंजूसी न करें दोस्तों। अगर मैं कहता हूं कि बहुत हार्ड लेबर की जरूरत नहीं है, अगर मैं ये कहता हूं कि दूसरी पढ़ाई करते हुए भी आईएएस किया जा सकता है, अगर मैं कहता हूं कि नौकरी करते हुए भी आईएएस किया जा सकता है, तो क्या आप मेरे इस कथन को इससे जोड़कर देख सकते हैं कितने घंटे चाहिए? सीधी सी बात है कि 18 घंटे पढ़ने के बाद आप आराम तो नहीं कर सकते। वो कहना क्या चाह रही हैं इसको आप खुद सोच करके देखिए। विनम्रता कभी न छोड़े दोस्तों। ये क्या है, विनम्रता कभी न छोड़े का क्या मतलब है? क्या आप इस पॉइंट को, चलिए मैं आपको सोचने के लिए अपनी तरफ से देता हूं, क्या आप इस पॉइंट को मेरे उस बार बार के कथन से जोड़कर देख सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं? जब मैं एकेडमी में आने वाले हर स्टूडेंट्स लगभग लगभग एक दो तीन दिन के बाद ये कहता हूं कि अपने को खाली करके आए, एम्प्टी करके आए, अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं जानता हूं, तो ये क्या है? ये एरोगेंस, ये विनम्रता नहीं है। यहां जो विनम्रता की बात कह रही है वो व्यवहार की विनम्रता तो है ही, ये ठीक वही है जिसे मैं कहता हूं कि शिकायत वाले नहीं, शिकायत करने वाले नहीं, आभार व्यक्त करने वाले बने। क्लेम हमेशा ये कंप्लेनिंग का जीवन न जिए, ग्रेटिट्यूड का जीवन जिए, आभार का जीवन जिए। क्योंकि ये जो आभार व्यक्त करने का जो जीवन है, जो धन्यवाद व्यक्त करने का जीवन है, जो विनम्रता का जीवन है, जो अपने को खाली करने का जीवन है दोस्तों, इसी में रिसीविंग पावर होती है, इसी में रिसीविंग पावर होती है। आप ऐसी बत्ती को, आप अगर बत्ती को बिल्कुल खड़ा कर दीजिए और उसे जलाने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना टाइम लगेगा। बहुत मुश्किल होगी कि वो अगर बत्ती जल पाएगी, लेकिन उसी अगर बत्ती को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए और अब उस पर आप आग दिखाइए, फट से पकड़ लेगी, झुकी और पकड़ी। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है। विनम्र बने और चीजों का की रिसीविंग पावर बढ़ गई। और मित्रों मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब यहां एकेडमी में स्टूडेंट आते हैं तो तब तक वे इस तथ्य को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होते हैं कि विनम्रता में ही रिसीविंग है, तभी वो इतने अच्छे, इतने अनुशासित तरीके से 15 दिन की क्लासेस अद्भुत तरीके से चल पाती हैं, जिसे देखकर दूसरे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो मित्रों ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है जो स्टूडेंट यहां आ रहे हैं, यह हर उसके लिए है जो सिविल सर्विस करना चाहता है, कुछ भी दूसरा कर बड़ा करना चाहता है, और सच पूछे तो मैं तो ये कहता हूं कि जो अच्छा जीवन जीना चाहता है। हमेशा विनम्र बने रहें, विनम्रता कभी ना छोड़ें दोस्तों। ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व को तो अद्भुत बना ही देता है। और फ्रेंड्स इस पर मैं इसलिए यकीन करता हूं क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 87 से लेकर 97 तक, 10 साल तक जब मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रहा, जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तब मुझे दुनिया के ऐसे महान महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला कि मैं उनकी लिस्ट आपको बता नहीं सकता, नेल्सन मंडेला और प्रिंसेस डायना और पता नहीं क्या क्या नाम, और मैंने उनमें जो विनम्रता देखी, अद्भुत विनम्रता, अद्भुत विनम्रता, तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी जो सफलता है उसमें इसका बहुत बड़ा राज है। और खुद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी तो विनम्रता की जीती जागती प्रतिमूर्ति ही थी, इसीलिए मुझे इस पर और भी ज्यादा विश्वास है। तो दोस्तों मैंने अपर्णा जी आखिरी में उन्होंने पॉइंट दिया है पॉजिटिव रहें, और इसके बारे में आप सब मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं और वक्त भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स आप सब उस लेटर को पढ़ें, नॉलेज सेंटर में अवेलेबल है, और मैं चाहूंगा कि बीच बीच में भी लगातार पढ़ते रहें। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ा बना सकती हैं। इनफैक्ट बड़ी चीज अपने आप में एज सच कुछ होती नहीं है। फ्रेंड्स, अब इस फर्स्ट पार्ट के बाद अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पर, वो है AIR न्यूज का पार्ट। दोस्तों, AIR न्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो स्किल इंडिया को लेकर के थी। आपने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास मिशन इन सब की शुरुआत कर दी है। न्यूज में तीन चार चीजें थी जो मैं आप लोगों को केवल ध्यान दिलाने के लिए बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये वित्त मंत्री ने हमारे कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि जो भारत है वो मानव संसाधन, विश्व के मानव संसाधन राजधानी बन सकती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है ये, कैपिटल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। अब आपको केवल ये सोचना है, जो भी, क्योंकि स्किल इंडिया की बात पहली बार तो नहीं की गई है, ये तो अभी उद्घाटन हुआ है ना, एक विधिवत तरीके से। आपने आर्टिकल्स इसके ऊपर पढ़े हैं, एडिटोरियल भी आए हैं, बहस भी सुनी होगी और आप खुद भी अपने में एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये स्टेटमेंट है कि मानव संसाधन की राजधानी बन सकती है इंडिया, ऐसा कैसे संभव है, इस पर आप सोच करके देखिए। जब आप इस पर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे एक्टिव होना शुरू हुआ है। अब वो आपको तथ्य देना शुरू करेगा और उन तथ्यों की लिस्ट बना लीजिए कि हाँ, हमारे ये है, इसकी वजह से बन सकता है, इसकी वजह से बन सकता है, इसकी वजह से बन सकता है। और जब आपको, आपके पास कुछ तथ्य इकट्ठे हो जाएं, तो फिर आप उन तथ्यों की प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, उनकी प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए कि नहीं, मुझे सबसे पहले एक को, तीन, तीसरे वाले को पहले स्थान पर लेना है, छठवें वाले को दूसरे स्थान पर लेना है। इसके बाद वो रफ वर्क करने के बाद अब उसकी फ्रेमिंग के लिए बैठिए, अब उस पर उत्तर लिखिए और कोशिश कीजिए कि आपके उत्तर 200 शब्दों में हो, 10% कम और अधिक हो सकते हैं। और अगर आपके उत्तर ज्यादा हो जाता है, होने दीजिए, फिर उसमें काट छाट कीजिए, कीजिए एडिटिंग, कीजिए मेहनत कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 के मेंस के लिए, इस पर आपको मेहनत करनी ही चाहिए, इसकी की गई मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी अगर आप सही और अच्छा टॉपिक चुनते हैं। देखिए, जब हम आंसर लिखने की बात कहते हैं तो ये नहीं कि कोई भी प्रश्न उठा लिया और आंसर लिखने लगे, हम वो उन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं जिसके पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। अगर मान लीजिए कि मैंने 50 आंसर की प्रैक्टिस कर ली, राइट, और उसमें से आप कल्पना कीजिए कि 6-7 आंसर भी ज्यों के त्यों आ गए, जो बहुत असंभव नहीं है, तो आप सोचिए कि मेरे 6-7 वो आंसर कितने अच्छे बन जाएंगे और इतने फटाफट बन जाएंगे कि मेरा समय भी बचेगा, क्योंकि मुझे अब सोचने के लिए ज्यादा समय लगेगा नहीं, मैं उस बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने दूसरे आंसर को और बेटर बनाने में लगा दूंगा। तो दोस्तों, इसके कई फायदे हैं और आप यहां कर सकते हैं, तो मैं जानबूझ करके इसको यहां करके छोड़ रहा हूं। और इस पर फ्रेंड्स एक एडिटोरियल कमेंट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा हूं, और आप चाहें तो इसका आंसर लिखने से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल कमेंट बिल्कुल पढ़ लें। और इसी तरह से एक एडिटोरियल कमेंट हमारा इनका इकोनॉमिक टाइम्स का भी है, आप इन्हें पढ़ें और इन पर सोचें और इन पर लिखने की कोशिश करें। दोस्तों, बस मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय, जो मैं फिर से वही वाक्य रिपीट करूंगा, जो थोड़ा आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत पढ़ने की कोशिश कीजिए, उस पर पूरी तरह से कमांड बनाइए, आप देखेंगे कि कैसे सफलता आपको नहीं मिलती है। मित्र, दूसरी जो खबर थी वो भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के थी। पार्लियामेंट शुरू होने वाली, आपको मालूम है कि भूमि अधिग्रहण बिल अभी संसद की समिति के पास है जो इस पर विचार कर रही है, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई है। यहां तक एक अभी एडिटोरियल कमेंट में लिखा हुआ है, मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि संसद की समिति के पास जो लोगों ने विचार रखे हैं उसमें सबसे ज्यादा लगभग 90% लोगों ने, 85% लोगों ने इसके विरोध में ही कहा है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक इस रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, उसमें बहस होगी नहीं होगी, क्या हंगामेदार होगा। आपको मालूम है कि अध्यादेश के भरोसे संसद ये भूमि अधिग्रहण बिल चल रहा है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है मित्रों, इसके बहुत से पॉइंट्स हैं। आप देखेंगे कि जब इस पर कोई अगर वकील को कह दिया जाए कि आप बताइए कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो आपको 20-25 पॉइंट दे देगा, लेकिन आपको 200 शब्दों में जब आपको उत्तर लिखने हैं तो आप कितने पॉइंट्स को लेकर के चलेंगे, हार्डली वो 3-4 पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा महत्व के हैं। सबसे ज्यादा महत्व की क्या है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता की आवाज खत्म कर दी गई है। दूसरा यह है कि इसका जो सामाजिक प्रभाव का जो मूल्यांकन वाली बात इससे पहले थी, उस प्रभाव को खत्म कर दी गई है। तो ये जो दो तीन जो सबसे क्रूशियल इश्यूज हैं, बस ये आपके दिमाग में होने चाहिए, तीन चार इशू आपके दिमाग में मेजर इश्यूज हैं और बस आपके सिविल सर्विस की तैयारी हो गई। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार की तरफ से दलीलें नहीं देनी है, आपको केवल यह बताना है कि सिविल सर्वेंट बनने के लायक मैं हूं, क्योंकि यह हमारे देश की वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर मेरी ये राय है, चाहे वो पारित होने में हो चाहे पारित न होने में हो, आप अपना व्यू एस्टैब्लिश कर लीजिए, दैट्स ऑल, खत्म। और इसके बाद इसको बीच बीच में दोहराते रहिए, और कोई नया डेवलपमेंट होता है तो नोट करते रहिए, आपकी तैयारी होती चली जाएगी। फ्रेंड्स, अगली जो न्यूज़ थी वो नीति आयोग की बैठक। आपने देखा कि नीति आयोग की बैठक में बहुत से चीफ मिनिस्टर्स नहीं गए हैं और उस पर जो स्टेटमेंट आया है सरकार का कि ये सहयोगात्मक संघवाद के विरुद्ध है। तो ये जो सहयोगात्मक संघवाद है, इस पर हम लोगों ने पहले बहुत चर्चा की है, इसलिए मैं इसको नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन रिपीट इस बात की जरूर करना इसको करना चाहूंगा कि ये जो सहयोगात्मक संघवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 साल से लगातार संघवाद पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक सहयोगात्मक संघवाद शब्द एक नया फ्रेम किया है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि सहयोगात्मक संघवाद क्या है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो काफी कुछ महीने पहले योजना पत्रिका का स्पेशल इश्यू भी इस पर आया है और मैंने कई आर्टिकल्स खासकर इसी टॉपिक पर आप लोगों को योजना पत्रिका के प्रोवाइड भी किए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मित्रों, इसके बाद ये था कि मेरे रेडियो में चर्चा का विषय है कौशल विकास के ऊपर, तो ये आप लोग कौशल विकास वाले हिस्से को आप लोग इसको अगर सुन सकेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। फ्रेंड्स, न्यूज़ के बारे में बस इतना ही। अब मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर आता हूँ। कुछ क्लिपिंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ। दोस्तों, एक क्लिपिंग है TSR सुब्रमण्यम जी का, जो खासकर दिल्ली में रेफरेंडम को लेकर के है कि कहा दिल्ली में जनमत कराया जाएगा कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कब कुछ समय पहले कहा है, और इसको लेकर के मैंने अपने जो बैच के फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी प्रोवाइड किया है, चूंकि TSR सुब्रमण्यम जी बहुत अच्छा लिखते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, इसलिए उनकी बात मायने रखती है और उन्होंने बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से इसको लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल छपा है, आप लोग इसे पढ़ लेंगे, देखेंगे कि बहुत से पॉइंट्स ऑलमोस्ट उसमें कवर किए जा चुके हैं स्पेशल ऑडियो गाइडेंस में, और इसमें आपको कुछ नया मिलेगा तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। मित्रों, एक और आर्टिकल है जिसकी चर्चा करके मैं बात खत्म करूंगा, दैनिक भास्कर का, डॉक्टर अनिल जोशी का। उसमें खासकर इन्होंने जो कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कारपोरेट को लेकर, उसकी बात की है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक नया दृष्टि मिलेगा देश के विकास के बारे में और उस विकास में जो कारपोरेट सेक्टर अपनी भूमिका निभा सकता है उसके बारे में। इसमें इन्होंने ये बात रखी है कि कारपोरेट को चाहिए कि वो गांव गोद लें। मुझे ध्यान आ रहा है कि लगभग 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था जनसत्ता में, वो छपा था, मैंने इसी बात को उठाया था कि अगर कारपोरेट एक एक दो दो तीन तीन अपनी हैसियत के अनुसार गांव लेकर के उसके पूरा विकास करने और उसकी देखरेख का दायित्व ले लें तो भारत के की तस्वीर बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक नया विचार जैसा है, तो प्लीज इसे भी आप देख लेंगे और दूसरे भी कई आर्टिकल्स हैं, नॉलेज सेंटर में अवेलेबल होंगे, आप सब देख लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर। सबसे पहले IAS के का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं स्टूडेंट्स ने, मेरे शुभचिंतक स्टूडेंट्स ने भेजी है, उन सबके प्रति बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। उनके नाम हैं शुभांकर मंडल, गोपाल कृष्ण न्यू दिल्ली से, मनीष भारती दरभंगा से, पाराशर सावलिया, ब्रिजेश वर्मा सिद्धार्थनगर से और भरत भिवानी से। आप सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक बहुत खूबसूरत मेल है, पहले भी इनका आया था, इमाम अली का, जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने AFE NGO करके जो संस्था बनाई है और उसके तहत वो क्या क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे इमाम, और मैं मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि इससे तुम्हारी भी कैपेसिटी बढ़ेगी और जो दूसरों की दुआएं और अच्छी भावनाएं मिलती हैं उससे हमारा रास्ता जो कठिन होता है काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इसी तरह से जोश खरोश से इस काम को आगे बढ़ाते रहो। एक मेल है संगीता जी दास का, उन्होंने इंडिया बार एग्जाम में सफलता प्राप्त की है, तो संगीता जी इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए मेरी ओर से और हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से भी। मित्रों एक रंजीत कुमार हैं जो अभी अक्टूबर के क्लास में आ रहे हैं, रंजीत कुमार पटना से हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, जो भी उनसे कांटेक्ट करना चाहें उस एरिया से आने वाले उनसे बात कर सकते हैं। रंजीत कुमार का मोबाइल नंबर है 8051891591। फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जो मॉक टेस्ट डाला गया है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगला मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि इस पहले वाले से भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो और भी अच्छा आप लोगों के लिए बन सके और भी उपयोगी बन सके। बस मुझे दुख इस बात का है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका इंग्लिश वर्जन उन्हें प्रोवाइड किया जाए, और मैं उस जरूरत को समझता भी हूं, लेकिन हम लोगों की अपनी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि ट्रांसलेट जो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसका ट्रांसलेशन बहुत कठिन काम होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यहां तक कि हिंदी में ही जब इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तो इतने उलझाव वाले हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए फिलहाल मैं माफी चाहूंगा कि हम लोग इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जरूरत 100% जायज है, हम लोग ऐसा कर पाते तो बेहद खुशी होती। आगे हम लोग शायद कुछ ऐसी कोशिश करें। मित्रों इसके बाद मैं अब उन सभी अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं, और इन्हीं मित्रों में से कुछ के नाम हैं: चंदन कपूर पटना से, धीरज कुमार चौधरी दिल्ली से, तनु प्रिया सिंह न्यू दिल्ली से, विनोद गिरवाल इंदौर से, अभिजीत नामदेव पाटिल श्रीन, सोनल गर्ग सागर से, प्रथम वशिष्ठ जामनगर गुजरात से, आशुतोष कुमार द्विवेदी खटीमा उत्तराखंड से, विपिन कुमार भागलपुर से, उदयपाल सिंह और राजीव रघुवंशी भोपाल से। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।